अभूतपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर डायरी में आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए चंद्रिका जोशी का नमस्कार। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों से नई नई जानकारियाँ। तो आधे घंटे के लिए इस सफर में हम देश के पूर्वोत्तर राज्यों की ओर आपको लिए चलते हैं। आप पूर्वोत्तर की अद्भुत क्षमता, प्रकृति की सुंदरता, पारंपरिक विरासत और सहजता को शब्दों से महसूस करेंगे। तो आइए चलें पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर भाई। आजकल गर्मी का मौसम है, सभी राज्यों में कमोबेश गर्मी है, कहीं कहीं गर्मी बहुत अधिक है। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में भी गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। त्रिपुरा में पिछले कई दिनों से चल रही भीषण गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि ये उतना ही प्रभाव जानवरों पर भी डाल रही है। इसलिए तापमान में बढ़ोतरी होने से सिपाही जाला चिड़ियाघर प्राधिकरण को ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी जानवर बीमार न पड़े, इसलिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि शेर जैसे जंगली जानवर और बाघ और तेंदुए तथा अन्य पशु भीषण गर्मी के कारण बीमार न पड़े। तो ये प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा है और इसके उपाय किए जा रहे हैं। हमारे अगरतला संवाददाता कुणाल शिंदे ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है।
द स्टिंगिंग इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज हिटिंग द मैनकाइंड हार्ड एंड इवन एनिमल्स आर नो एक्सेप्शन टू इट। The Sipahi Jala Zoo, the only zoo in Tripura which has several endangered species such as lions, tigers, leopards, exotic birds, bears and hippopotamus, is seen taking requisite actions to ensure that animals in their enclosure do not fall ill due to depleting electrolyte levels. As part of the measure to provide some respite to the animals from soaring heat coupled with high humidity, the zoo authority has been splashing gallons of water in the enclosure of lions, tigers, leopards and are also keeping ice blocks in the cage so that the intensity of heat is reduced.
Global warming yani jalvayu parivartan ka dansh मानव जाति पर भारी पड़ रहा है और यहाँ तक कि जानवर भी इससे अछूते नहीं हैं। सिपाही जाला चिड़ियाघर त्रिपुरा का एकमात्र चिड़ियाघर है, जिसमें शेर, बाघ, तेंदुए, विदेशी पक्षी, भालू और दरियाई घोड़े जैसी कई प्रजातियाँ हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है कि उनके बाड़े में गर्मी के स्तर के कारण कोई बीमार न पड़े। जानवरों को बढ़ती गर्मी के साथ उच्च आर्द्रता से कुछ राहत प्रदान करने के उपायों के अंतर्गत चिड़ियाघर प्राधिकरण शेर, बाघ और तेंदुए के बाड़े में पानी का छिड़काव लगातार कर रहा है और बर्फ के ब्लॉक यानी सिल्लियां भी रख रहा है, ताकि गर्मी की तीव्रता पिंजरे में कम हो सके। सिपाही जाला चिड़ियाघर के निदेशक विश्वजीत दास से हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा,
वी आर टेकिंग लॉट ऑफ मेजर्स एक्चुअली, सो लाइक giving the proper high water content fruits to the animals and spraying of water regularly and keeping the service room that we call night shelter cool and spraying water. Even we are giving birth to the our zoo animals, and these are we are taking lots of measures, and so far all the animals are in good condition. Moreover, we are in some enclosure of bigger carnivores like tigers and in zoo hospital also we are giving air cooler also, like in some birds we have exotic birds, so there we are giving fan also to keep the room cooler, and we are doing our best and hopefully there will be so far animal are good now, as of quite vigilant, and as a team we are working very hard and we are prepared for this also, because since we know that there will be high rise of temperature and all the schools are closed in the state, so we have taken a lot of precautionary measures and we are monitoring on regular basis, and all our team we are very vigilant about this, and hopefully we will overcome this. We are taking around 30 number of ice blocks per day. If required, we will take more also, but 30 is sufficient. Even the fruit content what we are giving the animal to our animals, so we are keeping all those fruits in a bucket, and in the we dip all those fruits in the ice and just we frozen fruits, you can say. We are giving frozen fruits also. Recently, we got the instruction from Central Dew Authority also. They have given some preventive measures, what to do, what not to do. So, movement of animal from one enclosure to another enclosure, we are not doing it. And properly, like carnivore, like meat and all, we are not giving it in the noon time. We are giving it in the afternoon time because due to this high temperature, they may not take the food properly. But other animals we are giving this frozen fruits mixed with ice and all.
चिड़िया घर के पशु चिकित्सक केशव देवनाथ ने कहा कि बाघ के बाड़े में बर्फ की सिल्लियां रखने, पानी का छिड़काव करने और कूलर लगाने के अलावा एक विशिष्ट तरह से आहार का पैटर्न बनाया गया है और उसका पालन किया जा रहा है, यानी कि उनके खाने पीने का एक अलग से चार्ट बनाया गया है ताकि ये देखा जा सके कि भोजन खाने के बाद जानवरों पर गर्मी का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके.
We have taken lots of precautions there for maintain that control heat web to the animals. Particularly, we have arranged ice cube for particular for every enclosure, every animals like lion, tiger, leopard, including omnivore animals like bear and monkeys also. Then they changed some food items also. We have included watermelons in the food diets like omnivore animals and herbivore animals. In case of carnivore animals like lion, tiger, we have added oral radiated solution for maintain their electrolyte balance in the body systems. They may feel comfort. In addition to that, we have arranged lots of waters and spraying the waters in the natural area around the natural area around the enclosure also. To maintain their body conditions, good conditions. Till now, the not yet situation arises where animals become sick or disease condition for heat will not yet arise till now. Now, the animals in the rescue animals, some rescue got rescued, is there only. But not heat, not yet arrived, situation still now arrived there.
जैसा कि पर्यावरण वेदों का ये मानना है कि तापमान में वृद्धि लगातार हो रही है और मनुष्य अधिक पेड़ लगाकर और जलवायु के लिए हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अब ये समय आ पहुंचा है कि आप अगली पीढ़ी को बेहतर भविष्य प्रदान करने के उद्देश्य से काम करें.
As the environmentalists observe that the rise in temperature is just a tip of an iceberg, it is time for humans to get into a combat mode by planting more trees and reducing the emission of greenhouse gases that cause further damage to the planet and work with an objective to provide better future to the next generation. Kunal Shinde from Akashvani, Agartala.
अब बात अरुणाचल की. अरुणाचल प्रदेश में 26 मुख्य जनजातियां और 100 से अधिक उप जनजातियां हैं और उनमें से एक जनजाति है आपातानी. आपातानी समुदाय के लोग अपना मुख्य उत्सव द्री मनाने की तैयारी कर रहे हैं. आइए अधिक जानकारी लेते हैं ईटानगर से हमारे संवाददाता राकेश डोले से.
आपातानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश के एक प्रमुख जातीय समूहों में से एक हैं. कहा जाता है कि आपातानियों के पास व्यवस्थित भूमि उपयोग प्रथाओं और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के पारंपरिक ज्ञान सदियों से रही है. ये जनजाति विभिन्न त्योहारों, जटिल हथकरघा डिजाइनों, बैंत और बांस के शिल्पकला और जीवन पारंपरिक ग्राम परिषदों के लिए जानी जाती है. आपातानी जनजाति का मुख्य त्योहार द्री है और जाहिर सी बात है कि राज्य के अन्य जनजातियों की तरह द्री भी कृषि आधारित त्योहार है. द्री जुलाई के महीने में मनाया जाता है. इस त्योहार को अच्छी फसल और सभी लोगों में सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है. राज्य के विभिन्न आपातानी इलाकों में त्योहार को मनाने के लिए तैयारी अभी से शुरू हो गई है. राजधानी शहर ईटानगर में गोल्डन जुबली कैपिटल कॉम्प्लेक्स द्री फेस्टिवल कमेटी ने भी कई कार्यक्रमों के साथ राजधानी क्षेत्र में त्योहार की तैयारी शुरू कर दी है. समिति इस वर्ष ईटानगर में अपना 50वां द्री उत्सव मना रही है. हाल ही में सेलिब्रेशन कमेटी ने ईटानगर में अपना पारंपरिक बौसी आयु और गंगू एलू पर एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया. बौसी प्रेमियों को समर्पित एक तरह का लोकगीत है। बौसी गीत से दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति करती है। आयु अपतानी पुरुषों द्वारा उनके समुदाय के वंशजों और पूर्वजों का एक अनूठा स्वरपात है और गंगू एलू अपतानी महिलाओं द्वारा बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र। यो संगीत वाद्य यंत्र साधारण धान के तना और एक पतली बांस की छड़ी से बनाए जाते हैं। सेलिब्रेशन समिति के अध्यक्ष डेनिस सुलू ने कहा कि यह प्रतियोगिता अपतानी जनजाति की सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखने का एक प्रयास है।
ये इस साल हमारा कैपिटल ब्रिज जो है 50th ईयर बना रहा है, सो दिस इज अ गोल्डन जुबली ईयर फॉर अपतानी ब्रिज इन ईटानगर। द फर्स्ट ब्रिज वॉज सेलिब्रेटेड इन 1974, तो ईटानगर जैसा ही खुला ब्रिज भी शुरू हुआ था, तो गोल्डन जुबली को मार्क करने के लिए हमने एक्सटेंसिव प्रोग्राम बनाया एंड वी स्टार्टेड ऑन 23 फरवरी वाकाथन करके जीरो से यहाँ तक आया। दैट वॉज किक ऑफ वॉज फ्रॉम जीरो एंड ईटानगर ग्राउंड से आज किक ऑफ है। तो आज का कॉम्पिटिशन है, आप प्ले ग्राउंड में देखेंगे कि बिसी आयु गंगू एलू ये कॉम्पिटिशन है। ये अपतानी का ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स हैं और चौथा में हम लोग सुनता था, अभी हम लोग इसको कभी सुनाई दे देता है, लेकिन इसको हम लोग रिवाइव करने के लिए पूरा जीरो से हमने वीडियोग्राफी लिया सबको, बुशी का किया, आयु का किया, गांगू और इलू।
मेरा केस दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर।
अब बात मेघालय की। मेघालय के लोग और यहाँ आने वाले पर्यटक अब इस मौसम की ताजी और स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी का आनंद ले रहे हैं। अभी हाल ही में शिलंग स्ट्रॉबेरी मार्केट मंगलवार को ये उत्सव शुरू हुआ और स्ट्रॉबेरी बाजार 3 मई तक दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक चला। इसमें स्थानीय उपज, कलात्मक अभिव्यक्ति और सामुदायिक भावना का एक साथ सुंदर संयोजन भी दिखाई दिया। 12 और 13 अप्रैल को इससे पहले मेघालय स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल आयोजित किया गया था और उसकी इस हालिया सफलता के बाद स्ट्रॉबेरी बाजार मेघालय की स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी और समृद्ध कृषि तथा पर्यटन उत्सव को बढ़ाने की दिशा में इसने एक अनूठा अवसर प्रदान किया है। इस उत्सव में नौहरन और सेंटुंग के खेतों में उगाई गई हाथ से चुनी हुई ताजा स्ट्रॉबेरी का प्रदर्शन किया गया। उपस्थित लोगों ने और सैलानियों ने स्थानीय उपज के साथ आगामी मौसम की स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी का स्वाद लिया। ये सीधे खेतों से लाई गई थी और यहाँ ये दिलचस्प बात है कि मेघालय ग्रास रूट म्यूजिक प्रोजेक्ट MGMP बाजार में आने वाले लोगों के सामने उन्होंने अपने पसंदीदा कलाकारों की प्रस्तुतियां भी देखी। ये पहल प्रतिभाशाली स्थानीय कलाकारों को भी एक साथ एक मंच पर लेकर आई और उन्हें अपना संगीत प्रदर्शित करने और समुदाय से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान किया। स्ट्रॉबेरी बाजार अभी सभी के लिए एक आनंददायक अनुभव रहा क्योंकि ये मेघालय की कृषि विरासत, वहाँ का जीवंत संगीत, वहाँ की खूबसूरती और मौसम की सबसे ताजी स्ट्रॉबेरी का स्वाद लेने के लिए एक बहुत ही सहज और सरल खुशी भरा जश्न बना। ये खेत से बाजार तक इस इलाके की स्ट्रॉबेरी और स्थानीय किसानों के समर्पण को प्रदर्शित करने वाला एक उत्सव कहा जा सकता है। राज्य के पर्यटन मंत्री ने महोत्सव से इतर संवाददाताओं से बातचीत की और कहा कि पहली बार पर्यटन विभाग ने बागवानी विभाग के सहयोग से इस महोत्सव का आयोजन किया और उत्पादकों और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे आया। सोहलिया निहुन और सिटुंग गांवों में इस उत्सव का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाले उत्पादों को प्रोत्साहित करने के बारे में लोगों को जागरूक बनाना और उन्हें इस बारे में जानकारी प्रदान कर संवेदनशील बनाना था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्ट्रॉबेरी बहुत ही दुर्लभ फलों में से है जो मेघालय में स्थानीय रूप से उगाया जाता है। इसकी बाजार में बड़ी संभावनाएं हैं और इसका स्वाद कुछ ऐसा है जो विश्व स्तरीय है। रिवार और रिभोई के दूर दराज के गांवों में भी इसके उत्पादक हैं और पर्यटन विभाग के प्रयास से स्ट्रॉबेरी के लिए इतना बड़ा आयोजन किया गया। ये एक तरह से उत्सव था और स्ट्रॉबेरी बाजार के इस दूसरे चरण में ग्राहकों की संख्या बहुत सी उत्साहजनक रही।
स्ट्रॉबेरी इज वन ऑफ द वेरी रेयर फ्रूट्स दैट इज लोकली ग्रोन हियर इन इंडिया। इट हैज ह्यूज मार्केट पोटेंशियल। इट्स टेस्ट इज समथिंग दैट इज वर्ल्ड क्लास एंड ऑल्सो वी हैव ग्रोअर्स from the distant villages of Rivar as well as Mumbai, and we would like to make sure that efforts of the tourism department should be in sync with the livelihood of our people, which is why we have organized just a couple of weeks ago the Strawberry Festival, and today the second stage is to have this strawberry market, and the football has been very tough.
स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्देश्य मेघालय की स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी के फल को उजागर करना और इसके फसल के लिए एक उत्सव तथा एक मंच प्रदान करना था, ताकि प्रत्येक खरीद के साथ खरीदार किसानों के कल्याण और आर्थिक रूप से उन्हें समृद्ध बनाने में योगदान देना भी था।
द स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल एम एट स्पॉटलाइटिंग द लशियस स्ट्रॉबेरीज ऑफ द स्टेट, with the strawberry market being an extension of the celebration of Meghalaya's bountiful harvest. The event will provide them with a platform to showcase the produce, and with every purchase, the buyer will be contributing to the welfare and economic well-being of the farmers. This is Lamphang Nongspung from AIR News Shillong.
आइए अब आपको लेकर चलते हैं नागालैंड और बताते हैं कि राज्य में 26 जून को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होंगे, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित है 33% सीटें। नागालैंड में 26 जून को शहरी स्थानीय निकाय में 3 नगर पालिका और 36 नगर परिषदों के लिए चुनाव होगा। राज्य में पहला नगर निगम चुनाव होगा जिसमें महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं। पिछला जो स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ था 2004 में, उसमें महिलाओं के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं था। अब इसमें नगर पालिका और नगर परिषदों के कुल मिलाकर 418 वार्ड हैं और कोहिमा, दीमापुर और मुकुकचुंग नगर पालिका परिषद में और बाकी शेष नगर परिषदों के अंतर्गत ये इलाके आते हैं। नागालैंड में लॉगड्रम खियामनियुंगन नागा जनजातियों के जीवन और गांवों में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। शुरुआत से ही लॉन्ग ड्रम खियामनियुंगन लोगों के जीवन का एक हिस्सा रहा है और कई मायनों में ये स्थानीय लोगों की एकता और उनकी ताकत का प्रतीक भी है। लॉन्ग ड्रम को गांव के अंदर तक लाने की परंपरा और इसमें बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक की सेवाएं ली जाती हैं। लॉन्ग ड्रम का उपयोग इसके महत्व के आधार पर विभिन्न अवसरों पर किया जा सकता है। एक गांव में एक से अधिक लॉन्ग ड्रम भी हो सकते हैं और प्रत्येक कबीला अपना स्वयं का लॉन्ग ड्रम भी रखता है। तो ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे कोहिमा संवाददाता एम शॉय की रिपोर्ट के साथ। आज सहनू हमें बता रही है, आइए सुनते हैं।
Once the log drum gets old and unusable, the village elders gather it and decide to make a new log drum. The elders make the decision of whose trees they should cut and is called the pyangpao, paipao. They also choose two people whose parents are alive and are not involved in any kind of hunting, thieves, and one who is pure.
To start cutting down the tree, the 2000 people are the first one to cut the tree with the prayer chanting Panyu aling mei ke ko te lo ji, asho mei ke ko te lo ji, nung panyu no kem ko zam ni achu kiu, kem ni ashu kiu. It is only after the 2000 men starts cutting the tree, others join them in the process. Once the process of cutting and shaping of the logdram is completed, which takes about 1 to 2 months or more, the villagers start the process of pulling the log. The logdram is binded by wild ropes, covering almost entirely for grips. The process of pulling may take some few days to even weeks to reach the village. In the entire process of pulling the log drum, if any unfortunate accident happens with the loss of life while pulling the log drum, the process of pulling stops and the log drum is left on the spot of the accident and they start the same process again by cutting a new log.
एक बार जब log drum पुराना और अनुपयोगी हो जाता है तो गांव के बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं और एक नया log drum बनाने का निर्णय करते हैं.
When the log drum reaches the village, a ceremony is being carried out by sacrificing a cock and dripping its blood on the drum and chanting words which means under this drum, whether it may be a boy or a girl, let them grow and spread like the branches of a tree, beautiful and courageous. At the same time, the villagers get dressed in their traditional war attires and begin to sing and yell near the drum. There are about four types of log drum beatings. Each beatings has a unique tone to it and they are meant differently.
लॉन्ग जंप को खींचने की प्रक्रिया में अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो जाती है तो इसे खींचने की प्रक्रिया रोक दी जाती है और लॉन्ग जंप को दुर्घटना स्थल पर ही छोड़ दिया जाता है और फिर से एक बार वो पूरी प्रक्रिया शुरू से शुरू की जाती है. और जब लॉन्ग जंप गांव में पहुंचता है तो ग्रामीण अपनी पारंपरिक युद्ध पोशाक पहनकर ढोल के पास गाना शुरू करते हैं. लॉन्ग जंप को चार तरह से बजाया जाता है और चारों की ध्वनि एकदम अलग होती है. लॉन्ग जंप की आवाज से सूर्य और चंद्र ग्रहण, गांव की जानकारी, युद्ध की चेतावनी और ड्यूटी पर तैनात गार्ड को दर्शाने के लिए किया जाता है.
The beating are used during solar and lunar eclipse, village informations, war warnings and guard on duty.
समुदाय के आधुनिक जीवन शैली की ओर बढ़ने के बावजूद ख्यामिन्युओं के हर गांव में लॉग ड्रम की थाप अभी भी सुनी जा सकती है.
Despite the community moving towards a modern way of life, the beating of the log drum can be still heard in every villages of the Kamiongans. Upon hearing the beating of the log drum, one can imagine and feel the vibration and presence of their forefathers and their way of living, reminding every individual on how they had lived and the rich culture passed on. With Amshu Asonyo, Kohima.
और अब बात सिक्किम की. सिक्किम में इंडियन हिमालयन सेंटर फॉर एडवेंचर एंड इको टूरिज्म IHCAE ने 2 मई से ग्यालसिंग जिले में 6010 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट तेनचिन हंग पर्वतारोहण अभियान के लिए सत्र के पहले अभियान को झंडी दिखाकर रवाना किया. संस्थान के निदेशक राजीव राय ने झंडी दिखाकर इस अभियान दल को रवाना किया. समारोह में भारतीय पर्वतारोहण संस्थान IMF की सिक्किम से सदस्य सुश्री शांति राय और केंद्र के प्रशिक्षक भी शामिल थे. IMF उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्वतारोहण को प्रोत्साहन देने के लिए, इसे बढ़ावा देने के लिए इस महीने की यानी पहली मई से 21 मई तक IHCAE के सहयोग से ये अभियान आयोजित कर रहा है. IMF पर्वतारोहण और उससे संबंधित अभियानों के लिए देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्थान है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसका विनियमन करता है. ये ओलंपिक क्लाइंबिंग प्रतियोगिता की नियामक संस्था भी है और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट क्लाइंबिंग से संबद्ध है. और अब बात असम की. असम की वन्य जीव संरक्षणवादी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को वेटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी कार्यक्रम में हमने पहले डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन से बातचीत भी आपको सुनवाई थी। असम की वन्य जीव संरक्षणवादी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को इस साल के वेटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुश्री बर्मन को ये पुरस्कार हरगिला नाम के प्रसिद्ध पक्षी के संरक्षण के लिए उनके अथक प्रयासों को देखते हुए दिया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा ने कामरूप जिले में स्थानीय लोगों की मदद से हरगिला के संरक्षण के लिए एक हरगिला आर्मी का गठन किया हुआ है। विश्व में हरगिला प्रजाति की सबसे ज्यादा संख्या कामरूप जिले में है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सुश्री पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर नाम से विख्यात विटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पूर्वोत्तर डाई की ओर से भी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को अनंत शुभकामनाएं। उत्तर का समूचा इलाका हवाई, सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा है, तो कोई भी जगह अब दूर नहीं। परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पूर्वोत्तर के राज्यों को अवश्य ही देखें और उनका आनंद लें। आप पूर्वोत्तर में अद्भुत आनंद, अद्भुत क्षमता और कौशल को देखेंगे और उसे महसूस करेंगे। तो अपने देश को देखिए और जानिए और चले आइए पूर्वोत्तर की ओर।
पूर्वोत्तर गाइड।
রাতি দুপরলে ময়না কেসা কেসা মরম তোমাক রাতিমে কাখতে বহুবায়ে ময়না মিঠা মিঠা সেনে তোমাক রাতিমে রাতি দুপরলে
के साथ ही अब आपसे अनुमति लेने का समय भी आ पहुंचा है। कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें हमेशा ही इंतजार रहता है। हमारा ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com। आपकी प्रतिक्रिया और आपके सुझावों के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044। तो अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी। अब हमें अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी।
बुझीबा तुमि कोले मोइना बुझी पाबा मोर होले मोइना मरहम नुवा सलते जोबहन नुवा सलते की ओई आदि देखो ना सोनियो নতুন নতুন লাগিছে না শুন খাজতে ও মইনা জান লাহি কঁকাল ভাঙিছে এর না শুনা পিন্ধিলে ঐ গাড়ি ঘামেড়ালে ঐ চাই থাকো লাগিছে চাই থাকো লাগিছে আজি।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।